एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक बेहद खास सफर पर निकल रहे हैं, कैथरीन ग्राहम की पुलित्जर पुरस्कार विजेता आत्मकथा पर्सनल हिस्ट्री के पन्नों में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कहानी है एक असाधारण महिला की, उनके अप्रत्याशित परिवर्तन की, वो भी 20वीं सदी के अमेरिका की उथल पुथल के बीच।
बिल्कुल, कैथरीन ग्राहम, ये नाम सुनते ही द वॉशिंगटन पोस्ट याद आता है। एक ऐसी प्रकाशक थी वो, जिन्होंने अपने समय के कुछ सबसे बड़े, मतलब विस्फोटक राजनीतिक और सामाजिक तूफानों के बीच अपने अखबार को संभाला।
हाँ, संभाला ही नहीं, नेतृत्व किया।
सही कहा। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सत्ता या प्रभाव की नहीं है, इसमें गहरा व्यक्तिगत संघर्ष है, असुरक्षाएं हैं, और फिर उनसे उभरकर शिखर तक पहुंचने की एक कमाल की यात्रा।
और शायद इसीलिए उनकी कहानी आज भी इतनी मायने रखती है। पुलित्ज़र पुरस्कार मिलना कोई छोटी बात नहीं है, ये उनकी ईमानदारी और उनके जीवन के उतार चढ़ाव का एक तरह से प्रमाण है। सोचिए, एक ऐसी महिला जो उस दौर में पली बड़ी जहां महिलाओं से उम्मीदें अलग थीं।
जी बिल्कुल,
परिवार संभालना, पति का साथ देना, यही सब।
हाँ, और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे भी रखा। फिर अचानक परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें वो भूमिका निभानी पड़ी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी।
उनका अनुभव इसलिए भी बहुत अनूठा था क्योंकि उनकी जगह देखिए, मीडिया, राजनीति, समाज, वो इन सबके ठीक चौराहे पे खड़ी थीं।
पेंटागन पेपर्स हों या वाटरगेट, ये सिर्फ खबरें नहीं थी उनके लिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ थे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का साहस, नैतिक बल और एक स्वतंत्र प्रेस का साथ मिलकर इतिहास बदल सकता है। ये बदलाव की कहानी है, हिम्मत की और सच कहने की जिम्मेदारी की।
तो चलिए इस असाधारण जीवन की कहानी को शुरू से समझते हैं। कैथरीन का जन्म तो एक बहुत ही संपन्न, मतलब प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता यूजीन मेयर,
हाँ, जाने माने वित्त पोषक थे, और उन्होंने ही 1933 में, जब वॉशिंगटन पोस्ट दिवालिया हो गया था, उसे एक नीलामी में खरीदा था। तो विरासत की शुरुआत तो वहीं से हुई।
सही, विशेषाधिकार तो थे, लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी का दूसरा पहलू भी है, उनकी माँ एग्नेस अर्नस्ट मेयर।
जी, वो बहुत बुद्धिमान थीं, कला साहित्य में रुचि, सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय, लेकिन कैथरीन के साथ उनका रिश्ता अक्सर थोड़ा दूर का, जटिल सा रहा।
अच्छा।
हाँ, मतलब एक भावनात्मक दूरी थी, और इसका असर ये हुआ कि कैथरीन के मन में बचपन से ही एक, क्या कहते हैं, अपर्याप्तता की भावना घर कर गई, कि शायद वो अपनी माँ की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती। ये एहसास उनके साथ काफी समय तक रहा।
हाँ, शिक्षा तो उन्हें बेहतरीन मिली, वैसर कॉलेज, फिर शिकागो विश्वविद्यालय, पत्रकारिता में रुचि भी थी उन्हें शुरू से।
हाँ, रुचि थी, लेकिन वो जमाना ही ऐसा था, महिलाओं से उम्मीदें अलग थीं। करियर, खासकर पत्रकारिता जैसा क्षेत्र जो पुरुषों का गण माना जाता था, वो उनके लिए नहीं था ऐसा माना जाता था। ये सब बातें उनके जहन में थी।
और फिर उनकी जिंदगी में आए फिलिप ग्राहम।
हाँ, फिलिप ग्राहम हार्वर्ड लॉ से पढ़े हुए, बेहद प्रतिभाशाली, करिश्माए भी और महत्वाकांक्षी भी। दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई, और कैथरीन ने खुशी खुशी अपनी पत्रकारिता की इच्छाओं को एक तरफ रख दिया फिलिप के करियर में उनका साथ देने के लिए।
और यहीं पर वो विडंबना है जो उस समय की सोच को दिखाती है ना, जब उनके पिता यूजीन मेयर ने द पोस्ट का नेतृत्व सौंपने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी बेटी को नहीं चुना।
नहीं, उन्होंने दामाद फिलिप ग्राहम को चुना, जबकि कैथरीन ने पत्रकारिता में रुचि दिखाई थी। इससे एक तरह से कैथरीन की वो जो दूसरी भूमिका थी ना, पहले पिता के साये में, फिर पति के, वो और पक्की हो गई।
और यहीं से कहानी में एक दुखद मोड़ आता है।
हाँ, बहुत दुखद और जटिल। फिलिप ग्राहम, जो बाहर से इतने सफल, इतने आकर्षक लगते थे, वो अंदर से एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, मैनिक डिप्रेशन, जिसे आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं।
ये कैसी स्थिति होती है?
इसमें इंसान, मतलब, कभी बहुत ज्यादा ऊर्जा, एक उन्माद सा महसूस करता है, जिसे हाई कहते हैं, और फिर अचानक गहरी पस्त कर देने वाली निराशा में चला जाता है। लो, ये चक्र चलता रहता है।
ओ,
इसका असर उनके व्यवहार पर भी पड़ा होगा, जाहिर है।
बहुत ज्यादा।
वो अनियमित रहने लगे, सार्वजनिक रूप से उनके दूसरे रिश्ते सामने आए, और वो कैथरीन के प्रति काफी अपमानजनक और क्रूर भी हो गए थे। ये कैथरीन के लिए एक बेहद दर्दनाक, कंफ्यूजिंग दौर था।
और ये वो समय था जब मानसिक बीमारी को लेकर समाज में बहुत अज्ञानता थी, है ना?
बिल्कुल। 1950 और 60 का दशक था। इसे छिपाया जाता था, इस पर बात नहीं होती थी, एक कलंक जुड़ा था। कैथरीन ने सालों तक यह सब अकेले संभाला, लाचारी, विश्वासघात, अकेलापन, बहुत कुछ सहा उन्होंने। और यह सब अगस्त 1963 में अपने चरम पर पहुंच गया जब फिलिप ने आत्महत्या कर ली।
सोचिए जरा उस क्षण को, 46 साल की उम्र, 4 बच्चे, पति की हाल ही में मृत्यु हुई है और अचानक आपके कंधों पर एक इतने बड़े अखबार साम्राज्य की जिम्मेदारी आ जाए।
उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो कंपनी बेच दें, एक सुरक्षित जीवन जिए,
हाँ, जो शायद आसान रास्ता होता,
या फिर उस अनजाने रास्ते पर चलें जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं था, द पोस्ट का नेतृत्व संभालें। उनमें आत्मविश्वास की भारी कमी थी, वो खुद को इस काम के लायक ही नहीं समझती थी।
लेकिन फिर भी
उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जैसा उन्होंने बाद में लिखा भी कि मैंने बस एक पैर दूसरे के सामने रखा, आंखें बंद की और किनारे से कूद गई। हैरानी ये थी कि मैं गिरी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी रही।
वाह, ये हिम्मत की बात थी।
बहुत। प्रकाशक के रूप में उनके शुरुआती साल बहुत संघर्ष वाले थे, बिजनेस का कोई अनुभव नहीं। अखबार में ज्यादातर पुरुष प्रबंधक और संपादक थे जो उन्हें गंभीरता से लेते ही नहीं थे।
अच्छा, उन्हें नजरअंदाज किया जाता था।
हाँ, बिल्कुल, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। उन्हें हर रोज खुद को साबित करना पड़ता था, दूसरों के सामने तो ठीक है, शायद सबसे ज्यादा खुद के सामने।
लेकिन वो डटी रहीं, सीखती रहीं, और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने द पोस्ट का नक्शा ही बदल दिया।
आप बेन ब्रैडली की बात कर रहे हैं?
हाँ, उन्होंने बेन ब्रैडली को अखबार का कार्यकारी संपादक बनाया। ब्रैडली बहुत महत्वाकांक्षी थे, ऊर्जा से भरे हुए और बेहतरीन पत्रकारिता के लिए जुनूनी थे। वो द पोस्ट को सिर्फ एक लोकल अखबार नहीं रहने देना चाहते थे।
बिल्कुल, वो उसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाहते थे। और कैथरीन और बेन ब्रैडली के बीच एक गजब का तालमेल बना। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और दोनों का लक्ष्य एक ही था, गुणवत्ता वाली निर्भीक पत्रकारिता।
ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई होगी।
हाँ, ब्रैडली की पत्रकारिता की समझ और कैथरीन का दृढ़ समर्थन, इसी ने मिलकर द पोस्ट के उस सुनहरे दौर की नींव रखी जिसके लिए वो आज जाना जाता है। और ये कैथरीन के खुद के विकास के लिए भी एक मील का पत्थर था, सही व्यक्ति को चुनना और फिर उस पर भरोसा करना।
और फिर आया 1971, पेंटागन पेपर्स। यहां से तो कहानी बहुत रोमांचक हो जाती है।
हाँ बिल्कुल, हुआ ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने वियतनाम युद्ध पर सरकार के कुछ गोपनीय दस्तावेज छापने शुरू कर दिए, पेंटागन पेपर्स। निक्सन प्रशासन तुरंत हरकत में आया, अदालत गया और टाइम्स पर रोक लगवा दी।
और तभी द पोस्ट के हाथ भी वो दस्तावेज लग गए।
जी हाँ, अब द पोस्ट के अंदर जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक तरफ वकील और बिजनेस सलाहकार थे, उनका कहना था कि अगर हमने छापा तो सरकार मुकदमा करेगी, देशद्रोह का आरोप लग सकता है। और सबसे बड़ी बात
क्या,
कंपनी ठीक उसी समय अपना पहला स्टॉक ऑफरिंग लाने वाली थी, मतलब पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचने की तैयारी। इस कदम से ये पूरी योजना, शायद पूरी कंपनी ही खतरे में पड़ सकती थी।
ओहो, ये तो बहुत बड़ा जोखिम था।
बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ थे बेन ब्रैडली और उनके पत्रकार। उनका मानना था कि सच बताना उनका कर्तव्य है, चाहे जो हो जाए।
तो अंतिम फैसला कैथरीन ग्रेहम को ही लेना था।
बिल्कुल, अकेले उन्हें। दबाव सोचिए कितना होगा, पैसे का नुकसान, कानूनी कार्रवाई, शायद जेल भी। लेकिन उन्होंने बहुत सोचा और फिर अपने घर से फोन पर बेन ब्रैडली को वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए। गो अहेड बेन, लेट्स पब्लिश।
आगे बढ़ो बेन, चलो छापते हैं। वाह, ये हिम्मत थी,
ये सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस था। और हुआ भी वही, सरकार ने उन पर भी रोक लगाने की कोशिश की, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अंत में जीत प्रेस की आजादी की हुई।
ये तो बहुत बड़ी जीत थी।
ऐतिहासिक जीत थी, ना सिर्फ द पोस्ट के लिए बल्कि अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। इस एक फैसले ने कैथरीन ग्रेहम को एक बहुत मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया।
लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई, इसके ठीक बाद वाटरगेट कांड सामने आ गया।
हाँ, वाटरगेट। 1972 में वाटरगेट होटल में डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर में एक सेंध मारी हुई। देखने में एक छोटी घटना लगती थी।
हाँ, शुरू में तो ऐसे ही लगा था।
लेकिन द पोस्ट के दो युवा रिपोर्टर बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन बहुत जिद्दी थे। उन्होंने इसकी तह तक जाने की ठान ली और उन्हें अपनी प्रकाशक कैथरीन ग्राहम का पूरा समर्थन मिला, अटूट समर्थन।
निक्सन प्रशासन ने तो इसे दबाने की पूरी कोशिश की होगी।
हर संभव कोशिश। द पोस्ट पर भयानक दबाव डाला गया, पर्दे के पीछे से धमकियां मिली, कंपनी के टीवी स्टेशनों के लाइसेंस रद्द करने की कोशिश हुई, अखबार की कैथरीन ग्राहम की सार्वजनिक रूप से बहुत आलोचना की गई। ये एक तरह का युद्ध ही था,
देश के राष्ट्रपति और एक अखबार के बीच।
जी, लेकिन कैथरीन ग्राहम पीछे नहीं हटी, उनका सबसे बड़ा योगदान शायद यही था कि उन्होंने न्यूज़रूम को इस बाहरी दबाव से पूरी तरह बचाया, एक कवच की तरह। उन्होंने वुडवर्ड और बर्नस्टीन को वो माहौल दिया जिसमें वो अपनी जांच जारी रख सकें, उन पर पूरा भरोसा दिखाया, संसाधन दिए।
और आखिरकार उनकी जांच ने ही निक्सन के इस्तीफे की नौबत ला दी।
बिल्कुल, अमेरिकी इतिहास का रुख मोड़ दिया। वाटरगेट के बाद कैथरीन ग्राहम सिर्फ एक अखबार की मालिक नहीं रहीं, वो प्रेस की आज़ादी का, साहसिक पत्रकारिता का प्रतीक बन गई, एक ग्लोबल हस्ती।
बाद में उन्होंने कंपनी का नेतृत्व अपने बेटे डोनाल्ड ग्राहम को सौंप दिया 1979 में।
हाँ, औपचारिक रूप से सौंप दिया, लेकिन वो बोर्ड में बनी रहीं और उनका प्रभाव और सम्मान हमेशा बना रहा।
अगर हम उनके जीवन के अनुभवों से निकले, उनके मूल दर्शन, उनके मूल्यों को समझने की कोशिश करें, तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं?
देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है असुरक्षा से ताकत तक का सफर। वो मानती थीं, और उनका जीवन दिखाता भी है, कि लीडरशिप कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अक्सर मुश्किल हालात में ही गढ़ी जाती है, निखरती है।
हाँ, ये बात तो उनके जीवन से साफ दिखती है। और दूसरा?
दूसरा, एक स्वतंत्र और साहसी प्रेस की जिम्मेदारी में उनका अटूट विश्वास। वो मानती थीं कि लोकतंत्र तभी स्वस्थ रहेगा जब प्रेस सत्ता से सवाल पूछेगा, उसे जवाबदेह ठहराएगा, भरे ही कितना भी जोखिम क्यों ना हो। पेंटागन पेपर्स, वाटरगेट, ये सब इसी विश्वास का नतीजा थे।
और ईमानदारी, निष्पक्षता,
वो तो उनके लिए सबसे ऊपर थे। उनका मानना था कि खबर को बिना किसी तरफ झुके पेश करना अखबार का पहला धर्म है। जैसा उन्होंने कहा भी, निष्पक्ष होना सबसे जरूरी है। और एक और बात, उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन के फैसले, हमारे संघर्ष इतिहास की बड़ी घटनाओं से जुड़ जाते हैं और उन्हें प्रभावित भी करते हैं।
ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि वो सत्ता या प्रसिद्धि के पीछे नहीं भाग रही थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा उन्होंने खुद लिखा है, उनकी मुख्य प्रेरणा थी जिंदा रहना, अपने परिवार की विरासत को, खासकर अपने पिता के अखबार को बचाना और संभालना। एक कर्तव्य बोध था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया।
उनके जीवन में कई मोड़ आए, लेकिन अगर तीन सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
ये मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश करते हैं।
मेरे ख्याल से पहला तो शायद 1963 में उनके पति फिलिप ग्राहम की आत्महत्या ही होगी। ये एक ऐसी व्यक्तिगत त्रासदी थी जिसने सब कुछ बदल दिया।
हाँ, मैं सहमत हूँ। इसने उन्हें अचानक, बिना किसी तैयारी के, उस लीडरशिप रोल में धकेल दिया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, अंधेरे में छलांग लगाने जैसा।
बिल्कुल, और ये परिवर्तनकारी इसलिए था क्योंकि इसी त्रासदी ने उन्हें अपनी अंदर की शक्ति को खोजने पर मजबूर किया। यहीं से उनकी आत्मखोज की यात्रा असल में शुरू हुई।
सही कहा। दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ मैं कहूंगा, बेन ब्रैडली को संपादक बनाना। ब्रैडली सिर्फ एक संपादक नहीं थे, वो एक विजन थे। उन्होंने द पोस्ट की पत्रकारिता की महत्वाकांक्षा को आसमान पर पहुंचा दिया।
और कैथरीन का उन्हें चुनना और फिर उन पर भरोसा दिखाना।
हाँ, ये उनके बढ़ते आत्मविश्वास का सबूत था, सही लोगों को पहचानने की उनकी क्षमता का। ये परिवर्तनकारी इसलिए था क्योंकि इस साझेदारी ने न सिर्फ अखबार को बदला, बल्कि इसने कैथरीन को भी एक लीडर के रूप में मजबूत किया, उन्हें अपने फैसलों पर यकीन करना सिखाया।
और तीसरा?
तीसरा मेरे लिए तो पेंटागन पेपर्स प्रकाशित करने का फैसला है, 1971 का वो क्षण।
हाँ, वो वाकई निर्णायक था।
जरा फिर से सोचिए उस स्थिति को, सरकार से सीधी टक्कर, कंपनी का भविष्य दांव पर, स्टॉक ऑफरिंग का समय, वकीलों की चेतावनी, और इन सबके बीच अकेले फैसला लेना, वो फोन कॉल, चलो छापते हैं, ये उनके करियर का शायद सबसे साहसी पल था।
और ये परिवर्तनकारी क्यों था और उन्हें वाटरगेट जैसी और भी बड़ी चुनौती के लिए तैयार किया?
जब हम कैथरीन ग्राहम के जीवन से मिलने वाले मानवीय सबकों पर सोचते हैं तो कई बातें जहन में आती हैं। पहली तो है इम्पोस्टर सिंड्रोम पर काबू पाना।
हाँ, वो एहसास कि हम शायद उतने काबिल नहीं हैं जितना लोग समझते हैं।
बिल्कुल, कैथरीन ग्राहम ने जीवन भर इससे संघर्ष किया, लेकिन उनकी कहानी दिखाती है कि आत्मविश्वास बैठे रहने से नहीं बल्कि काम करने से आता है,
डर के बावजूद कदम उठाने से बनता है।
ये बहुत बड़ी सीख है। और दूसरी?
दूसरी है मुश्किल हालात में ताकत खोजना। उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी, उनके पति की मृत्यु, वही आखिरकार उनके विकास का सबसे बड़ा कारण बनी। ये दिखाता है कि जीवन के सबसे मुश्किल दौर भी हमें बदल सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं।
उनकी कहानी मानसिक बीमारी से जुड़े उस दौर के सामाजिक कलंक को भी उजागर करती है ना? हाँ, बिल्कुल। फिलिप ग्राम की पीड़ा और कैथरीन का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को समझना, सहानुभूति रखना कितना जरूरी है। और उस समय ये कितना मुश्किल था।
और हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने 46 साल की उम्र में एक ऐसे फील्ड में कदम रखा जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी और फिर उसमें महारत हासिल की।
ये कमाल की बात है। ये दिखाता है कि सीखने, बढ़ने, बदलने की कोई उम्र नहीं। इच्छा हो तो किसी भी पड़ाव पर नई शुरुआत हो सकती है।
और साहस, साहस तो जैसे एक मांसपेशी है जिसे बनाया जा सकता है।
बिल्कुल, उनका हर मुश्किल फैसला, पेंटागन पेपर्स, वाटरगेट, उनके साहस को और मजबूत बनाता गया। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस है डर के होते हुए भी सही काम करने का चुनाव करना।
उनकी कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम सभी जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत नुकसान से उभरना, डर का सामना करना, अपनी टीम पर भरोसा करना।
हाँ, ये सार्वभौमिक अनुभव हैं, और ये उस दौर में लैंगिक भूमिकाओं में जो बदलाव आ रहे थे उसका भी एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। एक महिला जिसने पुरुषों की दुनिया में न सिर्फ जगह बनाई बल्कि उसे लीड भी किया।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें कैथरीन ग्राहम के जीवन और उनकी विरासत से तीन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने हों तो वो क्या होंगे?
ठीक है, कोशिश करते हैं। तीन अंतिम निष्कर्ष। पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। गहरे व्यक्तिगत दुख, हानि और असुरक्षा के अनुभवों से गुजरकर भी इंसान के अंदर एक असाधारण आंतरिक शक्ति और जीवन का एक नया गहरा उद्देश्य जन्म ले सकता है। कैथरीन ग्राहम का जीवन इसका सबूत है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी बदलाव और विकास संभव है। दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। एक स्वतंत्र, निर्भीक और जिम्मेदार प्रेस जो सच को सामने लाने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो, वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वो एक चलते फिरते स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा है। सत्ता को जवाबदेह ठहराने की उसकी क्षमता समाज की आज़ादी के लिए बेहद जरूरी है। पेंटागन पेपर्स और वाटरगेट ने यही साबित किया। और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सच्चा नेतृत्व कोई जन्मजात आत्मविश्वास या करिश्मा नहीं है। यह आता है सीखने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा से, डर के बावजूद सही काम करने के साहस से, अपनी कमियों को मानने की विनम्रता से, और मुश्किल हालात से गुजरकर लगातार बेहतर बनते जाने की क्षमता से। ग्रिन ग्रहम की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव जीवन के किसी भी मोड़ पर मुमकिन है, और असली ताकत अक्सर हमारी कमजोरियों पर जीत पाने से ही मिलती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।